आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न गंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोका न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न मृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोघम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोघम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम नाद्यं न मद्यं न गन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम् चिदानन्द रूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम् न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् चिदानन्द रूपं नमो गीतरागम् आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम् चैतन्यरतनाकरं सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयम् श्रीमान् हृदाव्युच्यताम्
वीतराग भगवान की। कल कोई कह रहा था कि वीतराग स्तोत्र का अर्थ कौन ने कहा था, मैं इसको थोड़ा सा बाद में करूंगा, इस स्तोत्र का अर्थ कर तो देऊंगा, ज्यादा कठिन नहीं है, पर ये अपन ने शुरू कर लिया है तो एक ही भाव का भी कर लें। इसका मैं एक ही दिन का काम है, कोई विशेष नहीं है, संस्कृत कठिन नहीं, उसमें वो कर देंगे हम। कल किसी ने हमको कहा था शाम को, अभी अपन एक ही भाव स्तोत्र का अर्थ कर रहे थे, पढ़ भी रहे हैं और उसका अर्थ भी कर रहे हैं, दो अर्थ हो गए, उन दोनों पदों को पढ़ें और फिर आगे के दो पद।
एकी भावं गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंसहेतुम् त्वामेवाहुर् जिनवर चिरम तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन् नमः कतिमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रु स्नपितवदनम् गदगदम् चाक्।
जल्दी मत करो, बहुत शांति से।
आनन्दाश्रु स्नपितवदनम् गदगदम् चाभिजल्पन् यस्यायेत त्वैदृणमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्ता दपि च सुचिरम् देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया काद्रवेया प्रागेवेह दिदिव भावना देश्यता भव्य पुण्या पृथिवी चक्रम कनकमयताम् देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारम् मम रुचिकरम् स्वान्तगेहम् प्रविष्टस् तत्किं चित्रम् जिनवपुरिदम् यत् सुवर्णीकरोषि।
अब देखें अपन क्या कह रहे हैं। मेरे साथ कर्मों का बंधन जो एक में एक पने को प्राप्त हुआ है, भाव में मुझे बहुत दुख देता है। उससे पार पाना आसान नहीं है, लेकिन हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति से वो कर्मों का बंधन भी कट सकता है। जब कर्मों का बंधन कट सकता है, तब संसार का और कौन सा ऐसा संताप है, ऐसा कौन सा दुख है जिसे कि आपकी भक्ति से दूर ना किया जा सके। इस विश्वास के साथ कि आपकी भक्ति से मेरे कर्मों के बंधन कट जाएंगे, तो फिर संसार के सारे दुख ही मिट जाएंगे। मुझे संसार के दुखों को अगर मिटाना है, तो मैं आपकी भक्ति से अपने कर्मों के बंधन को काटूं, उसी में मेरा निस्तार है। फिर मैं ही क्या, बड़े बड़े तत्वज्ञ गणधर महाराज जैसे, वे भी आपके लिए ज्योति स्वरूप मानते हैं। और ऐसा भी नहीं, सूर्य तो अकेले बाहर के अंधकार को दूर करता है, आप तो ऐसे केवल ज्ञान की ज्योति से युक्त हैं जिससे कि मेरे और सब जीवों के पाप रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं। और अब ऐसी स्थिति में जबकि आप ज्योति स्वरूप हैं, मेरे ध्यान के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो रहे हैं और निरंतर स्फुरायमान हो रहे हैं, निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं, तो आप ही बताइएगा मेरे भीतर क्या पाप का अंधकार रह जाएगा। बहुत बहुत सहज रूप से अपनी बात आचार्य वादीराज महाराज और भगवान के सामने, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन स्तुति भी ऐसी है कि इतने विश्वास से भरी हुई है कि जो मैंने सोचा है या जैसा मैं चाहूंगा वैसा मुझे प्राप्त हो जाए स्तुति के द्वारा। मुझे अपने शरीर को स्वर्ण के समान बनाना है ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं ऐसी आकांक्षा करके और आपके आपकी प्रशंसा को कम क्यों करूं। आपकी प्रशंसा तो इसमें है कि आप कर्मों के बंधन काट देते हैं, फिर ये छोटी मोटी चीजें क्या मायने रखती हैं। और फिर मैं ऐसा अविश्वास भी क्यों करूं। प्रार्थना वही करता है जिसको कुछ मिलने का विश्वास ना हो, वही करेगा, वही रिक्वेस्ट करेगा कि दे दो, हम कितने दिन से आपके यहां अर्जी लगाए हुए हैं। और जिसको ये विश्वास है कि मुझे मिलेगा तो उसको प्रार्थना बनाने की जरूरत नहीं, वो तो जाके खड़ा हो जाएगा। जैसे कि बेटे को कभी मां से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है कि मुझे दे दो, लाओ मेरा राइट बनता है, हाँ ऐसे करके। तो इसी तरह ये है, भक्ति भी इसी तरह की है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और भगवान के ऊपर भी विश्वास के साथ और अपने कर्मों की निजरा के लिए भक्ति की जाती है। ये बात बार बार इन पदों में आएगी। आगे कह रहे हैं आनंदाश्रु, आनंदाश्रु कहो या हर्षाश्रु कहो, हर्ष विभोर होकर के जब हमारे आंसू आने लगते हैं तब कह रहे हैं कि हर्षाश्रुओं से स्नपित वदनम, जिसका कि पूरा वदन अर्थात मुख, यहां वदन का मतलब मुख है, तो कह रहे हैं कि हर्ष के आंसुओं से जिसने अपना मुख धो लिया हो, और गदगदम चावि जलपन, और गदगद कंठ से जो व्यक्ति यश्च आयेत त्वयि दृढ़ मना, और आपके प्रति जिसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया हो, और स्तोत्र मंत्रैर भवंतम, और स्तुति को मंत्र बना लिया हो, ऐसी स्थिति जिस व्यक्ति की है, क्या क्या किया उसने, हर्षित होकर के जो आंसू आए उनके द्वारा मुख धो लिया है, और कंठ जिसका गदगद है, आपकी भक्ति कर रहा है जो व्यक्ति, और भक्ति ही उसके लिए मंत्र हो गया है, और आपके प्रति उसकी अत्यंत एकाग्रता है, दृढ़ मन हो गया है। जब भी कोई व्यक्ति सर्प का विष उतारता है तो मंत्रवादी को स्नान करना आवश्यक है, मंत्र का ठीक ठीक कंठ से उच्चारण करना जरूरी है, और मंत्र में एकाग्रता होनी चाहिए, इतनी बातें जरूरी हैं। और वही कह रहे हैं वादिराज महाराज कि मैंने भी आपकी इन स्तुति को ही मैंने मंत्र बना लिया है, और आप में मेरी अत्यंत दृढ़ श्रद्धा है, मैं आपके प्रति एकाग्र हो गया हूं, और मैंने मुख नहाया किससे, मैंने हर्ष के आंसुओं से नहाया। एक दिन किसी ने पूछा था ना, फिर मुझे मालूम पड़ा कि कई लोगों ने पूछा कि महाराज के आंसू आ जाते हैं तो उनको दोष नहीं लगता होगा। हाँ, कई लोगों के मन में महाराज कड़े वचन कह दे इसमें दोष नहीं लगता, महाराज के अगर आंसू आ जाए तो दोष लगता है, देखो तो मजा। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, संसार है, हर शास्त्रु से जिसका भगवान की भक्ति करते समय वाणीम गदगद यन बपु पुलक यन नेत्र द्वयम श्रावयन, भगवान की सच्ची भक्ति तो वो है जिसमें कि आंसू बहने लगे, अपने कर्मों को कैसे काटूं इस बात के लिए भीतर ही भीतर और मन भर गया है, ऐसी स्थिति। वही यहां पर कह रहे हैं कि आज भगवान की स्तुति करते हुए मैं हर्षित हो रहा हूं, आनंद के आंसू बह रहे हैं, और कंठ अवरुद्ध हो गया है, गदगद होकर के स्तुति कर रहे हैं। सारी चीजें दे दी हैं कि अत्यंत हर्ष से स्तुति करना, अत्यंत गदगद कंठ से स्तुति करना, और अत्यंत दृढ़ चित्त होकर के स्तुति करना, और वो स्तुति मंत्र बन जाएगी। तब फिर क्या होता है, तस् अभ्यस्ताद अपि च सुचिरम देह वल्मीक मध्यान्ह, जिनको बहुत समय से रहने का अभ्यास हो गया है, कहां रहने का, देह वल्मीक, देह रूपी बामी में, वल्मीक बोलते हैं बामी को, सांप की बामी होती ना, चीटियां बामी बनाती हैं उसमें सांप रहने लगता है, वो वल्मीक कहलाता है। तो देह रूपी तो हो गई बामी, जिसके भीतर बहुत समय से सुचिरम अभ्यस्तात, बहुत समय से जो रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, कहते व्याधया विषम व्याधया काद्रवेया, काद्रवे कहलाते हैं सर्प, विषम व्याधि रूपी विभिन्न प्रकार के सर्प जिसमें रहने के लिए अभ्यासी हो गए थे, वे जैसे ही मंत्र स्तुति सुनते हैं और वे निष्कास चंते निकलना शुरू हो जाते हैं। हमें तो भगवान आपकी स्तुति कर रहे हैं और हमने सुना है कि जैसे कोई मंत्रवादी और सर्प के मंत्र को उतार देता है, अगर वो बहुत प्रसन्न चित्त होकर के गदगद कंठ से और स्थिर चित्त होकर के मंत्र का उच्चारण करे, मैं भी जो है अत्यंत दृढ़ चित्त होकर के गदगद कंठ से और हर्ष से युक्त होकर के आपकी स्तुति को ही मैंने मंत्र बना लिया है, उसका पाठ कर रहा हूं। जो व्यक्ति भी करेगा वो क्या होगा, उसके उसके जितनी भी, जैसे कि सर्प निकल के बाहर चला जाता है, ऐसे ही व्याधियां तो हो गई सर्प, विभिन्न प्रकार की विविध विषम व्याधियां, अत्यंत विषम, जिनका की उपचार संभव नहीं है, ऐसी व्याधियां रूपी सर्प भी जो है, जो चिरकाल से रह रहे थे शरीर रूपी बामी में, शरीर को बामी बना करके, वे भी जो है आसानी से निकल जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी व्याधि ठीक हो जाए, मुझे तो मालूम है कि मैं जैसे स्तुति करूंगा सब भागेंगे, वो उसमें क्या, देखना आप कितने कॉन्फिडेंस से भर के कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी व्याधि आप ठीक कर दो, नहीं, मेरी व्याधि तो ठीक होगी ही, क्यों, क्योंकि मैंने आप में स्थिर चित्त होकर के और गदगद कंठ से और अत्यंत हर्षित होकर के आपकी स्तुति शुरू की है, और अगर मैंने स्तुति ठीक ठीक ढंग से शुरू की है तो ये व्याधियां इत्यादि अपने आप ही मेरे से दूर हो जाने वाली हैं। इस विश्वास के साथ ये स्तुति, भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं, स्तुति का महत्व भी बता रहे हैं कि स्तुति कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ में नहीं मांगते हुए भी जैसे सब कुछ मांग लिया। हाँ, कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमें व्याधि ठीक कर दो, लेकिन ठीक हो जाएगी वो, तो हमें क्या उसमें मांगना थोड़ी है। आगे आगे और देखिएगा सबसे जबरदस्त स्तुति किस तरह से करते हैं। प्रागे वेह मतलब पहले ही है, त्रिदिव भवनात्, त्रिदिव कहलाता स्वर्ग, उससे एष्यताम भव्य पुण्यात, हे भगवान स्वर्ग लोक से आपके आने से पहले ही, आप क्यों आते हैं स्वर्ग लोक से, भव्य भवी भागन बस, भव्य पुण्यात, भव्य जीवों के पुण्य से जब आप स्वर्ग से आने वाले थे उससे पहले, प्रागेव पृथ्वी चक्रम कनक मयताम, तब हमने सुना है कि आपके आने से पहले, अभी आप आए ही नहीं, आपके आने की खबर भर आई है कि आने वाले हैं 6 महीने बाद, हैं 6 महीने पहले आपकी खबर आ गई आने की, और आपके आने से पहले ही सारी पृथ्वी, जन्म होने से 15 महीने कह लो, 6 भी क्यों, 15 महीने आपका जन्म होगा जब, उसके पहले से ही सोने की हो गई है पृथ्वी, देवों के द्वारा उसको सोने का बना दिया है, ना इन्नी माने निन्नी मतलब प्राप्त कराया गया है, अर्थात आपके स्वर्ग से आने से पहले ही जब यह सारी की सारी पृथ्वी सोने की हो गई, हमने सुना है ऐसा, हमने देखा नहीं है भगवान ऐसा कह रहे हैं, हमने सुना है कि आपके आने से पहले सोने की हो जाती। अब हमारा काम क्या है, ध्यान द्वारम मम रुचिकरम, मेरी अपनी श्रद्धा से ध्यान के द्वार से स्वांत गेहम प्रविष्ट, आप मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हो तो तत्किम चित्रम जिन बपुरिदम यत सुवर्णी करोसी, अगर मेरी देह सोने के समान हो जाए तो इसमें कौन सी बात है, ये तो तय है, जब आपके आने से पहले और पृथ्वी सोने की हो सकती है तो आप मेरे अपने श्रद्धा से और मेरे ध्यान के द्वारा भक्ति के द्वारा मेरे हृदय में विराजोगे तो मेरा स्पर्श करोगे, आप बिना स्पर्श किए जब सोने की हो गई तो आप जब मेरा स्पर्श करोगे तो मेरी देह सोने की हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी, सो डेफिनेट, अब इसमें कुछ ना आपको करना ना मुझे कुछ करना है, वो तो हो ही जाना है, इतना मतलब इतना विश्वास उनके लिए है कि मैं जैसे स्तुति कर रहा हूं मेरा कार्य बहुत आसानी से पूर्ण होने वाला, मांगा भी नहीं है और कार्य भी हो गया। इस तरह ये दो अपन ने अर्थ कर लिए, इनका मैंने जो हिंदी किया है वो आपको बताऊं शायद आसान हो जाए। आनंदित हो जिसने धोया आंसू से तन मन सारा, आनंदित हो जिसने धोया आंसू से तन मन सारा, भक्ति भाव से तन्मय होकर गदगद स्वर से कीर्ति मंत्र तेरा दोहराया, उस सेवक के बहुत पुराने विविध व्याति के नागों को इस तन बामी से पल भर में जाते देखा, अपने आप ही रोग निष्कासित हो जाते। भव्य जनों के पुण्य उदय से स्वर्ग लोक से जब तुम आए धरा स्वर्ण सी दमक उठी थी। भव्य जनों के पुण्योदय से स्वर्ग लोक से जब तुम आए धरा स्वर्ण सी दमक उठी, तब ध्यान द्वार से मन के इस मंदिर में जिनवर अब आओगे तो स्वर्ण बने तब रुग्ण देह ये विस्मय इसमें तनिक नहीं। मुझे इसमें जरा भी विस्मय नहीं है कि ये देह सोने की हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने आपकी आपको अपनी भक्ति से अपने हृदय में बिठा लिया है। इस तरह इसका ये अपन ने अर्थ कर लिया। थोड़ा सा कठिन है ये स्तोत्र, अपन लोग अगर इसके अर्थ समझें तो बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी थोड़ा सा कठिन है पर अभ्यास करने से सारी चीज आसान हो जाएगी। थोड़े से प्रश्न अपन इसको पूरा कर लें। सात तिथियां कौन सी हैं? ये एक दिन और हमने चर्चा करी थी, मुझे उस दिन तक छह मिली थी पर पढ़ा जरूर था कि सात। अभी परसों जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें सात तिथियां मिल गई, पूरी सात हो गई। हाँ तो क्या है, अतिवृष्टि अनावृष्टि दो चीजें, चूहों के द्वारा होने वाले विशेष प्लेग इत्यादि, और महामारी जिसको कहते हैं जो कि तोतों से भी होती है, और टिड्डी दल पांच, और स्वचक्र अर्थात ग्रह युद्ध हो जाना, और परचक्र का आक्रमण अर्थात कोई बाह्य आक्रमण हो जाना। इस तरह से ये सात ईतियां कहलाती हैं। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, तो वहां ईति भी साथ हैं और भीति अर्थात भय भी साथ हैं। सात ईतियां कौन सी हुई फिर से गिने, अनावृष्टि बारिश नहीं होना, अतिवृष्टि बाढ़ आ जाना, यज्ञ माने सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना, दोनों ही संकट हैं। ईति का मतलब होता है संकट, विपदा है ना, तो संकट कैसे, इतना संकट कि सबके ऊपर बाढ़ आ गई या कि सूखा पड़ गया या कि टिड्डियों ने, टिड्डी दल होता है वो एकदम आकर के सारी फसल को चौपट कर देते हैं या कि तोते आकर के सारी फसल को चौपट कर देते हैं। तो ये दो अलग अलग ईतियां हैं। और फिर उसके बाद में मैंने भूल गया क्या, हाँ चूहों के द्वारा जो महामारी रोग फैल जाता प्लेग वो, और फिर ग्रह युद्ध हो जाना, आपस में ही देश में ही युद्ध छिड़ जाना, वो भी एक बहुत बड़ा संकट है, या फिर दूसरे देश के द्वारा आक्रमण हो जाना, पर चक्र का आक्रमण। ऐसे ये सात ईतियां हैं भैया, अब आप नोट कर लीजिएगा, इनको याद रखेंगे बार बार पढ़ेंगे तो। कर्म बंध में मिथ्यात्व की भूमिका क्या है, आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में सबके समझ में लायक डिस्कशन तो कर सकता हूं, बाकी ज्यादा मेरा भी ज्ञान नहीं है, किताबों के नाम सजेस्ट कर दूंगा तो आराम से पढ़ लेना। सबसे पहले सन 1976 में चतुर्मास के दौरान आचार्य महाराज ने सबसे पहले बहुत सारे विद्वानों के बीच में यह बात रखी थी कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। फिर से सुने, और आचार्य ने बोलते समय यह कहा था कि टेप करने वाले लोग टेप कर रहे होंगे, वे मेरी बात को ध्यान दें, आश्रव और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। अकिंचित कर के मायने क्या होता है, मेरे और आपके चर्चा के दौरान इसका कोई काम नहीं है, ये अकिंचित कर है। ठीक है, समझ में आया, इसका तो काम है मेरी और आपकी चर्चा के बीच, लेकिन इसका क्या काम है, रखी रहो तो नहीं रखी रहो तो, ये कहलाता अकिंचित कर। ठीक है, ये आचार्य श्री का वाक था। उसके बाद में चर्चा शांत शांत रही, कोई कुछ नहीं बोला है। फिर उसके बाद सन 80 में हम लोगों की दीक्षा हुई, और उसके बाद जो है इस टॉपिक पर कुछ लोगों ने और चर्चा शुरू करी। और फिर जब लोग चर्चा करते हैं तो हमने ज्ञानियों के साथ ये मुश्किल देखी है कि अनेकांतवादी ना होकर के वे एकांत का पोषण करने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा मैंने, हो सकता है मेरा अनुभव ठीक ना हो, पर मैंने अधिकांश पढ़ंता लोगों को, हाँ ऐसे ही शब्द का बोल रहा हूं मैं, अधिकांश बहुत ग्रंथों के स्वाध्याय करने वालों को एकांत और आग्रही होते देखा है, जबकि अनेकांत और निराग्रही दृष्टि होनी चाहिए। फिर बाद में जो है एक लेख छपा कि इस तरह का प्ररूपण करना स्वयं मिथ्यात्व है। अब छटपटाएगा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कह दे किसी के लिए। फिर धीरे धीरे लेख मालाएं शुरू हुई और चलता रहा, किताबें लिखी गईं,
मिथ्यात्व किंचित कर है या नहीं है। फिर इनने किताब लिखी तो उसके अपोज में दूसरी किताब लिखी गई, फिर उनने लिखी तो उनके अपोज में तीसरी, उनने कहा सबकी समीक्षा वाली एक और किताब, चार हो गई अभी तक, अभी एक हमारे पास आज ही आकर के रखी गई। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है भगवान जाने, मैं उसको देखूंगा, देखना। तो इस तरह से ये चर्चा बढ़ती रही और बात कुल जरा सी थी कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में ये बताओ बंध कितने प्रकार का होता, चार प्रकार का कोई भी जानता है, कौन कौन सा, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, ठीक है। प्रकृति और प्रदेश बंध किसके द्वारा होता, योग के द्वारा, योग के द्वारा भूलना नहीं। प्रकृति और प्रदेश यानी नेचर और क्वांटिटी, कर्म जो आएंगे उनका नेचर क्या है और क्वांटिटी क्या है, ये डिसाइड करेगी हमारे मन वचन काय की क्रिया। और इसमें ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी कौन डालेगा, इसमें स्थिति और अनुभव कौन डालेगा, कषाय। इसमें कहीं मिथ्यात्व आया क्या, नहीं आया, लेकिन इतनी छोटी सी बात। फिर आगे बढ़े तो कहते नहीं मिथ्यात्व को, ये मिथ्यात्व तो बांधने वाला है। तो कहते जरा राजवार्तिक पढ़ो, अनंतम मिथ्यात्वम यद बधनाति इति अनंतानुबंधी। अनंत मिथ्यात्व को बांधने, अनंतम इति को अर्थ था, कहते मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, अनंत को बांधने वाली, अनंत के मायने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को बांधने वाली अनंतानुबंधी कषाय है। मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति डालने वाली अनंतानुबंधी कषाय है, अन्यथा मिथ्यात्व में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जब भी मिथ्यात्व बंधेगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बंधेगा, अन्य किसी जगह नहीं बंधेगा। मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व बंधेगा और स्थिति अनुभव कौन डालेगा, कषाय डालेगी। चर्चा कुल इतनी सी है, आप सामान्य व्यक्ति के समझने की भी है, कोई कठिन सी नहीं है। एक मिथ्यात्व नाम का कर्म होता है भैया, कर्म प्रकृति होती है, और कोई भी 148 कर्म प्रकृतियां हैं वो अपने साथ बंधती हैं, उसमें जो ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी है वो कषाय डालती है। चार कषायें हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। बहुत स्पष्ट सी चीज थी, अब इस चीज को और खूब चर्चा का विषय बना करके, कोई पॉजिटिव कहता है कोई उसके अपोज में है, दोनों तरह के हैं। अब आपको उलझना हो तो पढ़िएगा, किताबें पढ़िएगा, और सुलझना हो तो सीधी सीधी सी बात है। तब आखिरी में इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्यों कहा था, हमने आचार्य श्री से पूछा कि इस तरह के प्ररूपण के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने कहा उद्देश्य यही था कि अपन बार बार कहते हैं मिथ्यात्व हटाओ मिथ्यात्व हटाओ, अरे तो मिथ्यात्व ऐसे हटेगा क्या, कोई ऐसी चीज है क्या कि यहां रखी थी और वो हमसे चिपक गई और हमने हटा के फेंक दी तो हट जाएगी, ऐसे तो होगी नहीं। कषाय जब तक मंद नहीं होगी, जब तक कषाय मंद नहीं होगी तब तक हमारा पुरुषार्थ मिथ्यात्व को काटने का चलेगा ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि कषाय को पहले मंद करो, मिथ्यात भगाओ भगाओ कहने से नहीं होगा, मिथ्यात कुछ नहीं करता, हमारी कषाय ही उसको आमंत्रित करती है और वो ही उसको रोके रखती है, हमारी कषाय। अगर हम कषाय बंद, और फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो 70 किलोमीटर की स्पीड से एक गाड़ी चल रही हो, आप उसमें से उतर सकते हैं क्या, उतरो हाथ पैर टूटेंगे, उतर तो सकते हो 70 की स्पीड भी चल रही, और अगर वही 1 किलोमीटर की स्पीड से चले तो आराम से उतरो चलो। इतनी सी बात थी, जिस कषाय से 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती है अगर वो मंद हो जाए तो अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ेगी, और जब अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ने लगे तो आराम से मिथ्यात्व पर चोट करो, 3 टुकड़े हो जाएंगे उसके, सम्यक प्रकृति का भी उपशम कर दिया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का तीनों का उपशम कर दिया, तो उपशम सम्यक दर्शन और सम्यक प्रकृति का उदय है, और 2 का उद्व्याभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है, तो क्षय उपशम सम्यक दर्शन हो। इतनी थोड़ी सी सैद्धांतिक चर्चा है, पर जिनने प्रश्न किया है उनके तो समझ में आ जाएगी, बाकी लोगों के भी थोड़ी बहुत तो समझ में आएगी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा, कर्म बंधन में मिथ्यात्व की भूमिका क्या है, इतनी ही है कि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व बनता है, बाकी मिथ्यात्व का कर्म के बंधन में कोई विशेष रोल नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जो प्रकृतियां बंधती हैं वे मिथ्यात्व के उदय में ही बंधती हैं, और मिथ्यात्व को संसार का कारण माना गया है। श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व नास समम, हाँ वो पूरा बोलिए, शुरू शुरू का मैं भूल गया मैं, सम्यक क्या है वो, और इसके पहले वाली ना सम्यक तु समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्या तु समम नान्यत् तनुभ्रताम। ये है वो पूरा। तो सम्यक के समान जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई नहीं है। इसलिए हमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए, हमें मिथ्यात्व से बचने का प्रयत्न करना चाहिए और मिथ्यात्व से बचने के प्रयत्न के लिए कषायों को मंद करना चाहिए। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते, जिसको कर्म मंद न करने हो ते कषाय न करो, कषाय ना करो। कषाय करेंगे तो मिथ्यात्व भी बना रहेगा। आचार्य श्री कहते कि कषाय बाबा है, पहले उसको हटाओ तब मिथ्यात्व उसके पीछे अपने आप चला जाएगा। मंद कषाई को ही विशुद्धि लब्धि इत्यादि होती हैं। जब तक कषाय मंद नहीं हो, जब तक दो बातें धर्म की सुनने में नहीं आएंगी, कषाय की तीव्रता होवे तो पुरुषार्थ ही काम नहीं चलता है, कर पाता। इसलिए पहले मिथ्यात्व ऐसा नहीं है कि रखे रहो अपने भीतर, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, मिथ्यात्व को तो हटाना है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? कषाय को मंद करके फिर उसके बाद इस प्रक्रिया को करें। उद्देश्य ये था। अब भैया मैं इतना ही बता पाऊंगा इसके बारे में, बाकी तो फिर बहुत बड़ा डिस्कशन है, आप करते रहिएगा। हम चाहते हैं, अच्छा ये बात को, आप भजन भजन सुनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहते, कहां तक रोज रोज भजन, दो तीन गिने चुने भजन है, कहां से लिया है? और केवली भगवान तीन लोक तीन काल को ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जानते देखते हैं, तो क्या वे उन जीवों के सुख दुख का अनुभव भी कर सकते हैं या अपने भूत भविष्य के सुख दुख का भी अनुभव कर सकते हैं? देखो ऐसा है, बहुत अच्छा उदाहरण है, दर्पण के सामने रोशनी रख दो तो दर्पण को कुछ फर्क पड़ेगा? दर्पण के सामने अग्नि जले तो क्या दर्पण को उससे कोई फर्क पड़ेगा? दर्पण के सामने बर्फ का टुकड़ा रखा हो तो क्या दर्पण को उससे कोई ठंडक का अनुभव होगा या कि गर्मी का अनुभव होगा आग रखने पर? ठीक इसी तरह केवल ज्ञान को दर्पण के समान माना है, जिसमें कि भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त द्रव्य और उसके अनंत पर्यायें स्पष्ट दर्पण के समान झलकती हैं, लेकिन भगवान के तो मुंह इत्यादि का अभाव है। कर्मों के अभाव होने से उनके लिए सुख दुख का कोई भी वेदन नहीं होता है। इस अपेक्षा से आपके प्रश्न का जवाब यही हुआ, सिर्फ सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंदरस लीन, सबको जानते देखते हैं लेकिन अपने आत्मा में लीन रहते हैं। मोह के अभाव में वेदनी का सुख दुख का जो अनुभव है वो उनको नहीं होता, ना स्वयं का और ना दूसरे का, वे अपने में लीन रहते हैं। इस तरह से ये हो गया। घर में भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए या कि सिर्फ मंदिर में करनी चाहिए? उत्तर हमारा पहले से रटा रटाया है, वो हम दे देते हैं आपको। हाँ, पहले से फिक्स है, उसमें कोई रद्दो बदल अभी तक तो नहीं हुई है ना। क्या उत्तर है? अगर आप घर में भगवान की तस्वीर के सामने आरती करते हो तो करते रहें, अगर आप नहीं करते हो तो कृपा करके शुरू ना करें। ठीक जी, लिख लो आप, हमारा उत्तर है, अगर आप अपने घर में अभी तक बहुत दिनों से भगवान की तस्वीर के सामने आरती करते आ रहे हो तो बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका मन नए सिरे से शुरू करने का हो तो कृपया शुरू ना करें, मंदिर में आकर के ही करें। इतने ही जवाब है। मुनि महाराज को गंदोदक लेते नहीं देखा, क्या मुनि महाराज गंदोदक नहीं लगाते? आपने देखा नहीं होगा, हम तो रोज लगाते, सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर वो बाबा जी हमको रोज जो है वो अभिषेक दिखाते हैं और हम अभिषेक से कई बार जो है इनकार कर देते हैं अभिषेक के गंदोदक का, क्योंकि अगर मर्यादा का जल नहीं है, मान लो हाँ मर्यादा का जल नहीं है, गर्म नहीं किया है और अकेली लवंग वगैरह डाल के कर लिया है श्रावक ने मान लो, तो फिर वो गंदोदक नहीं छूते, इसलिए कभी नहीं लेते भी देखा हो। या कि क्या करते हैं, कपड़े से पोंछ करके या कपड़ा लगा करके फिर उस कपड़े में से निचोड़ के देते हैं, तो वो भी नहीं लेते, डायरेक्ट आ रहा हो भगवान के कॉन्टेक्ट से, ये बीच में कपड़े वाला मामला क्या? तो इस वजह से कई बार जो है मना भी कर देते हैं। तो अभी हम जब वहां उस मंदिर में जाते थे तो एक दिन तो उन्होंने कपड़े से देना चाहा, मैंने कहा इससे तो नहीं लूंगा, बोले फिर आप ही ले लो। तो मुझे बढ़िया फैसिलिटी मिल गई, वो जो नीचे उसमें आता है मूर्ति में से उसके आसन पर, तो मैं आसन पर से आराम से हाथ धो करके और लगा लेता हूं रोज जो है। इसलिए निषेध नहीं है, उन्हीं महाराज को कोई देवे तो, लेकिन वो अभिषेक नहीं करेंगे, ये तो इसका तो है अभिषेक नहीं करेंगे। लेकिन और अभिषेक देखने का भी कोई नियम नहीं है, अगर सहज रूप से अभिषेक देखने मिल जाए तो सौभाग्य। शांति सागर जी महाराज ने लिखा कि मैं रोज जो है भगवान का पंचामृत अभिषेक देख करके आहार ग्रहण करता हूं। शांति सागर जी महाराज ने चारे चक्रवर्ती में पढ़ो, रोज पंचामृत अभिषेक देख करके आहार करता हूं, क्या करूं ये शुभ क्रिया है, वैसे मेरा काम तो शुद्धोपयोग में लीन रहने का है, पर क्या करें अशुभ ध्यान से बचने के लिए यह क्रिया आज मुनि महाराज को भी आवश्यक हो गई है। देखने की, करने की नहीं, फिर भी हाँ देख लें अगर सहज रूप से मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि अब बाजे बज करके और फिर महाराज अभिषेक देखने आ रहे हैं और फिर अभिषेक हो रहा ऐसा नहीं, मतलब नहीं तो फिर ये प्रक्रिया बन जाए कि वो महाराज आ रहे हैं देखने के लिए, या कि जैसे ही महाराज साहब आए उनने कहा कलसा कर दो कलसा कर दो और शुरू हो गए कलसा करने, ना कुछ पड़ा ना कुछ। तो ये नहीं, अगर सहज रूप से हो रहा है तो फिर ना हमारा करवाने का काम है ना कि हमारा हमारा सिर्फ प्रेरणा देने का और उपदेश देने का काम है। और अगर कोई करता है तो उसको ग्रहण कर लेते, अपन को उनकी प्रक्रिया ठीक नहीं लगती तो शामिल भी नहीं होते उसमें, जहां ठीक लगती है तो शामिल हो जाते हैं इस तरह। तो गंधोदक लेना लेते तो हैं, आचार्य महाराज भी लेते हैं गंधोदक, भगवान का कोई दे देता है तो ले लेते हैं। घर में भगवान की तस्वीर के सामने पहले दीपक, अरे अच्छा पहले दीपक जलाना जरूरी कि मंदिर में? भैया मंदिर में तो भगवान के सम्मुख जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है वास्तव में तो उसी के सम्मुख अस्त्र द्रव्य इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, अस्त्र द्रव्य में से एक दीपक भी अस्त्र द्रव्य में शामिल है, इसलिए तो प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने ही दीपक इत्यादि से व्यवहार करते हैं। वो तो मैंने इसलिए कहा कि अगर घर में कोई व्यक्ति और इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर चुका है तो फिर सहसा उसे बंद करेगा तो उसे धर्म ध्यान की जगह संक्लेश और होने लगेगा, कम से कम उस बहाने थोड़ा बहुत धर्म ध्यान तो करता है, वो अपवाद मार्ग है मूल मार्ग नहीं है। मूल मार्ग तो यही है कि हम जिनेन्द्र भगवान के बिंब के सम्मुख ही ये पूजन इत्यादि की अस्त्र द्रव्य से प्रक्रिया को करें, एक्सेप्शन तो संभव है इस अपेक्षा से कहा था। अच्छी बात, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने तक जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।